थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवन में देते हैं, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, जो इस समय अलग अलग स्थानों पर, गांव में, शहरों में, पहाड़ों और जंगलों में आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके, हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि यूहन्ना ने देखा कि प्रभु यीशु एक एक मुहर को इस पृथ्वी पर खोल रहा है। कहने का अर्थ यही है कि इस पृथ्वी पर महाक्लेश के दृश्य उत्पन्न कर रहा है। पहली मुहर के खुलते ही श्वेत घोड़े का सवार अर्थात ख्रिस्त विरोधी निकला, जो पृथ्वी पर झूठी शांति लाने का स्वांग रच रहा है। उसके बाद लाल घोड़े का सवार दूसरी मुहर के खुलने पर निकलता है, जो युद्ध का प्रतीक है। और इस प्रकार हर एक मुहर के साथ एक घोड़ा और उसका सवार निकलता है, जिनका अपना अपना कार्य है। तो आइए हम देखेंगे दूसरी मुहर का खोला जाना, अर्थात लाल घोड़े का सवार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेरे प्रियो, पहला घुड़सवार प्रभु यीशु नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु द्वारा लाई गई शांति अस्थाई होगी। श्वेत घुड़सवार के बाद लाल युद्ध का घोड़ा निकला। श्वेत घोड़े के सवार द्वारा लाई गई शांति नकली अर्थात झूठी और अस्थाई थी। ख्रिस्त विरोधी अपने आप को विश्व शांति स्थापित करने वाले शासक के रूप में प्रकट करता है, परंतु वह उसका उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है यशाया नबी की पुस्तक 57 अध्याय उसके 21 पद में, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। धर्मशास्त्र का यह वचन निश्चय ही पूरा होता है। मेरे मित्रों, आज हम शांति से इतना दूर हैं कि पहले कभी इतना दूर नहीं रहे या नहीं हुए थे। तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ख्रिस्त विरोधी झूठा होगा, वह शांति नहीं लाएगा, क्योंकि यह लाल घोड़ा युद्ध का प्रतीक है, विश्व युद्ध होगा। अब आप यह न कहें कि यह पूरा हो गया है, यह भावी घटना है, भविष्य की घटना है। आगे हम देखते हैं तीसरी मुहर का खुलना, काले घोड़े का सवार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, कहता है कि तेल और दाखरस की हानि ना करना। यूहन्ना फिर कहता है कि उसने सुना और देखा। वह कहता है कि हम इसे मन में बैठा लें। काला रंग विलाप का प्रतीक है। देखिए यर्मिया नबी के पुस्तक 4 अध्याय उसके 28 पद में जहां पर इसके बारे में वर्णन है, मलाकी के पुस्तक 3 अध्याय के 14 पद में भी। यह अकाल का भी प्रतीक है। विलाप गीत 4 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है, वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते, उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है, तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज के बिना भूख के मारे सूखता जाता है। मेरे प्रियो, यह काला घोड़ा विश्वव्यापी अकाल को दर्शाता है। युद्ध के बाद भोजन वस्तुओं की कमी तो होती ही है। यूनान के इतिहासकार हेरोदोटस ने लिखा कि सैनिक का दैनिक भोजन लगभग 1.5 किलो मक्का और मजदूरी 1 दिनार होगी, जिसे हम मत्तीरचिसु समाचार 20 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं। अतः परिवार का पोषण करना कठिन था। तेल और दाखरस धनवानों का सुख साधन था। तेल अर्थात आज की तुलना में नहाने धोने की सामग्री तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि, ये सुख सामग्री हैं। दाखरस का अर्थ है शराब। यह बड़ी विचित्र बात है कि खाने के लिए अन्न नहीं होगा, परंतु शराब बनाने के लिए जौ बहुतायत से होगा। धनवानों के लिए शराब होगी। कहते हुए मुझे संकोच नहीं होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय धनवानों को भोजन की कमी नहीं थी, उन्हें जीवन का पूरा सुख प्राप्त था। मुझे एक धनवान मनुष्य ने बताया कि वह जब चाहता अपना मनपसंद भोजन खाता था। मुझे तो अपने कठिन दिन आज भी स्मरण है। ऐसा ही फिर से होगा। धनवानों की सब वस्तुएं उन्हें दी जाएगी, सब कुछ मिलेगा, परंतु गरीब लोग वंचित हो जाएंगे। ऐसा सदा से होता आया है और होगा। मैं गरीबी उन्मूलन की बातें सुनकर आश्चर्य करता हूँ। गरीबों का तो भला नहीं हुआ, परंतु अनेकों को इस योजना से नौकरी अवश्य मिल गई है। गरीबों को सिर उठाकर जीने का अवसर कभी नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि गरीबों का मसीहा केवल प्रभु यीशु है। भुलक्कड़ मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। अब कल्पना करें कि भविष्य की परिस्थिति कैसी होगी। प्रकाशित वाक्य भविष्य का वृतांत है। मेरे प्रियो, मैं आज की परिस्थितियों का उदाहरण देता हूं तो इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि ये घटनाएं निरर्थक नहीं है। ऐसा होना निश्चित है और होगा। किसी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी द्वारा मनुष्य के भरण पोषण हेतु उपज लाने से कहीं अधिक है। उस समय तो उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 77 राष्ट्रों द्वारा निर्मित भोजन एवं कृषि संस्था की रोम में हुई सभा में भूख और कुपोषण पर विचार करते हुए अध्यक्ष ने कहा था, आज नहीं तो कल भोजन उत्पाद अपनी चरम सीमा पर होगा, और यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो भूखमरी नरसंहार करेगी, जैसा प्राचीन काल में आकर बीमारियां और युद्ध एक साथ मिलकर करते थे। मेरे प्रियो, संयुक्त राष्ट्र संघ के भोजन एवं कृषि संस्थान के निदेशक ने चेतावनी दी थी, मैं संसार को अंतिम चेतावनी देते हुए सेवानिवृत्त होता हूं। यदि समस्या का हल नहीं निकाला गया तो 50 वर्षों में संसार में अव्यवस्था हो जाएगी। संसार के राष्ट्र निर्बुद्धि हैं। किसी ने ब्यौरा दिया है कि समाजवादी दायरे के सीमांत देशों में 75 करोड़ लोग अधिकाधिक भूखे होते जा रहे हैं, भूखमरी बढ़ती जा रही है। मेरे प्रियो, अकाल युद्ध के बाद आता ही है और आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या होगा। अब हम देखते हैं चौथी मुहर का खोला जाना, पीले घोड़े का सवार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। महामारी से पृथ्वी की चौथाई जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय दवाइयों की कमी पड़ जाएगी। लिखा है उसके सवार का नाम मृत्यु है। यद्यपि उस घुड़सवार का नाम मृत्यु है, परंतु यहां मृत्यु युद्ध से अधिक मानव रूप नहीं धरती है। शरीर की मृत्यु में जो दिखता है उससे अधिक है। जी हाँ, मृत्यु शारीरिक क्रियाकलाप के समाप्त हो जाने से अधिक है। शरीर मर जाता है, परंतु खोए हुए मनुष्य की आत्मा अधोलोक में जाती है। आप लुकरची सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 पद को पढ़िए, जहां पर इसका वर्णन है। रोमियो के पत्र 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। आगे कहता है कि उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। अधोलोक नरक नहीं है, कृपया ध्यान रखें। या तो वह स्थान है जहां मरणोपरांत आत्मा जाती है, या यह केवल कब्र के बारे में है जहां पार्थिव शरीर रखा जाता है। दूसरे शब्दों में मृत्यु शरीर को आती है और अधोलोक में उद्धार रहित मनुष्य की आत्मा जाती है। प्रभु यीशु ने यही कहा है। हम रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 14 पद में देखते हैं, पौलुस मृत्यु को मानव रूप देता है और उसी अंश में पाप को भी व्यक्तिगत रूप देता है। वह बल देने के लिए ऐसा ही करता है। पाप और मृत्यु एक ही साथ संसार में आए थे। पाप का परिणाम मृत्यु है। आदम से मूसा तक मनुष्य आदम के समान पाप नहीं किया था। उनका पाप व्यवस्था का उल्लंघन भी नहीं था, न ही आज्ञा का उल्लंघन था, जैसा कि आदम ने किया था। मेरे प्रियो, उस समय तक 10 आज्ञाएं नहीं दी गई थी, तथापि मनुष्य पाप करता और मरता था। आदम का पाप उनका पाप हो गया था, क्योंकि वे भी आदम के समान मर गए थे। जल प्रलय में शिशु भी मारे गए थे। अंततः मृत्यु का त्रिमुखी अर्थ है, जिसे हम मृत्यु से नहीं जोड़ते हैं। हम मृत्यु को केवल शरीर से ही संबंधित रखते हैं। पहली बात हम देखते हैं, यह शारीरिक मृत्यु है जो आदम के पाप के कारण है, और दूसरी बात है एक आत्मिक मृत्यु भी है जो परमेश्वर से अलगाव और विद्रोह है। हम आदम से मृतक स्वभाव को पाते हैं। इसका अर्थ है कि हम में परमेश्वर के लिए योग्यता नहीं है और न ही उसके लिए मन में इच्छा है। और तीसरी बात हम देखते हैं, अनंत मृत्यु, जो परमेश्वर से सदाकालीन वियोग है, अलग हो जाते हैं। यदि मनुष्य का उद्धार ना हो तो यह अनिवार्य है। यह दूसरी मृत्यु है जिसके बारे में हम अध्याय 20 पद 14 में देखेंगे। मेरे मित्रों, आदम के पाप में गिरने से पूर्व परमेश्वर ने उससे कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 2:17 में, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम 900 वर्षों से अधिक जीवित रहा, परंतु परमेश्वर के लिए वह उसी दिन आत्मा में मर गया था। वह परमेश्वर से दूर भागा, उसमें अब परमेश्वर के साथ सहभागिता की लालसा नहीं थी। वह आत्मिकता में मर गया था और शारीरिक मृत्यु उसके पीछे पीछे चली तथा मानव जाति में प्रवेश कर गई। वह अधिकाधिक मानव जाति में का विनाश करने लगी। आज हम दवाओं और विज्ञान के अद्भुत विकास के कारण अधिकाधिक जीने की प्रेरणा को पाते हैं, परंतु सच तो यह है कि मानव जाति का पतन हो रहा है। जी हां, यदि आधुनिक साधन न हो तो हमारा जीवन काल बहुत छोटा हो गया है। आदम निश्चय ही मसीह का रूपक है। मृत्यु आदम का उत्तरदायित्व है और उसके द्वार पर ही उसे खड़े रहना है। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं सृजा था, यह आदम का दंड था, क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। क्योंकि आदम मानव जाति का पिता है, इसलिए उसका पाप संपूर्ण मानव जाति पर आ गया है, अर्थात संपूर्ण मानव जाति का पाप है, और उस मृत्यु को जो आदम को दी गई हमारी मृत्यु है। प्रभु यीशु नई सृष्टि का पहलौठा है और नई सृष्टि उसी से जीवन पाती है। केवल वही है जो जीवन देता है। वह अपनों के जीवन और अनंत परमानंद का उत्तरदायी है। मेरे प्रियो, डॉक्टर लुइस स्पेरी शॉपर ने कहा है, इस प्रकार आत्मिक मृत्यु एक अटूट वंशावली में तुरंत आती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक मृत्यु तुरंत आदम से आती है कि प्रत्येक मनुष्य शरीर में मर जाता है, क्योंकि आदम के आदि पाप में उसकी भागीदारी है। जी हां, महाक्लेश के युग में मृत्यु बेलगाम हो जाएगी। मत्तीरचि सुसमाचार 24:22 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। बड़े श्वेत सिंहासन के न्याय में मृत्यु अंततः नष्ट की जाएगी। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:14 में। इसकी पुष्टि पौलुस के वचन में भी हमें मिलती है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 15:26 में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:4 में इसे फिर से कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। मेरे प्रियो, तलवार, अकाल, महामारी और वन पशु इस पृथ्वी की चौथाई जनसंख्या को नष्ट कर देंगे। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता यहेजकेल के द्वारा इसके होने की भविष्यवाणी की थी। यहेजकेल नबी की पुस्तक 14:21 में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हों। हम देखते हैं पीला घोड़ा पृथ्वी के निवासियों के नष्ट होने के लिए महामारी और अकाल का प्रतीक है। यहां रोगाणु युद्ध की संभावना भी है। किसी वैज्ञानिक का कहना है कि कि परमाणु बम किसी क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या नष्ट कर सकता है, परंतु जीवाणु युद्ध में एक ही सप्ताह में संपूर्ण जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। मेरे प्रियो, हमने चार घुड़सवारों का निकलना देखा है। यह वही विधि है जिसका उल्लेख प्रभु यीशु ने किया है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 5-8 पद में। जैतून के पर्वत पर उसने अपने शिष्यों से कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। जी हां, यह महाक्लेश का आरंभ होगा। हमें सब बातें पहले से बता दी गई है ताकि हम अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं। आज हम संसार में लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, एक राज दूसरे राज के साथ लड़ाई करता है उसको सुनते हैं, भूखमरी देखते हैं, भूकंप देखते हैं। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस उद्धार को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मृत्यु से बचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज आप प्रभु यीशु की ओर लौटें, क्योंकि वह आपका इंतजार कर रहा है और चाहता है कि आप उसके राज्य में शामिल किए जाएं। मेरे श्रोता मित्रों, निर्णय आपको लेना है। इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को आपको जांचना है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप वचन में बने रहें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
धरती हर्षित मगन।